लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यार के सागर, सुख के सागर, बाप दादा की इस अलौकिक तपस्या भूमि में हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली, सभी ब्राह्मण कुलभूषण खुदाई खिदमतकार आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे ही आप सभी ने ये न्यूज सुनी होंगी कि हमें बाबा मम्मा की वरिष्ठ दादियों और भाइयों की कर्म भूमि तपस्या भूमि में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उस दिन से मन एक ही गीत गा रहा और वो गीत आज के मुरली में भी है जी, तकदीर जगाकर जी, सच ना। तो ऐसी अव्यक्त मूर्त बाप दादा की इस तपस्या भूमि में हम सभी पधारे हैं और हम सभी के बीच में इस डबल लाइट योग साधना भट्टी, भट्टी का विशेष टाइटल है डबल लाइट योग साधना भट्टी तपस्या भट्टी। तो विशेष रूप से आज इस भट्टी की शुरुआत करनी और हम सभी को हमारे इस विशेष टॉपिक के लक्ष्य तक पहुंचाने की मदद के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी बहुत शीतल, शक्तिशाली और शालीन बुद्धि, जिनके मुखार बिंदु से स्वयं माता सरस्वती के शब्दों का बोलना होता है, जिनकी गरिमा में उपस्थिति से हम सभी को बहुत ही बाबा की गुह्य रहस्यों को जो मुरली के द्वारा हमें अनुभूति होती है, ऐसी महान विभूति राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय शीलू दीदी जी हम बीच उपस्थित हैं। शीलू दीदी जी के लिए हम कहेंगे कि दीदी जी 1948 में मुंबई महानगरी में दीदी जी का जन्म हुआ है और 12 वर्ष की आयु से दीदी जी ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और उसी के साथ साथ 21 वर्ष की आयु में ही बीएससी कंप्लीट करने के बाद दीदी जी माउंट आबू में ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से समर्पित हुए। 1970 से 74 तक दीदी जी ने भारत के अनेक राज्यों में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की और इसी के साथ साथ 1974 से 76 तक विदेशों में अनेक स्थानों पर दीदी ने, जैसे अफ्रीका के कई देश, मॉरिशियस, ऐसे कई देशों में दीदी जी ने ईश्वरीय सेवाएं दी और उसके बाद 1976 से दीदी जी आदरणीय बड़ी दादी जी के कहने पर यहाँ पर मधुबन में, है ना, पांडव भवन में खास करके शिविर, राजयोग शिविर कराने के लिए हमेशा दीदी जी के लिए हम कहते हर की पौड़ी, अर्थात घर में आकर के इनसे ज्ञान गंगा का अनुभव करने की जो विधि है वो दीदी जी के द्वारा हम यहाँ प्राप्त करते हैं। दीदी जी का प्रथम प्रसारण जी टीवी पर रहा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की दीदी जी प्रमुख वक्ता के रूप में साकार साक्षात्कार माध्यम टीवी चैनलों पर प्रसारित हुए, तो दीदी जी के कई सारे अनुभव और वैल्यूज के ऊपर दीदी जी ने लेक्चर्स दिए और उसी के साथ साथ दीदी जी एजुकेशन विंग, जो राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, दीदी जी उनके चेयरपर्सन भी हैं और उसी के साथ साथ दीदी जी विशेष रूप से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पांडव भवन के सह मुख्य प्रशासिका के रूप में भी दीदी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो दीदी जी, हम रोज आपसे सवेरे के मुरली, है ना, बाबा के महावाक्य सुनते तो हम सभी लालायित हैं आपके मुख से आज के डबल लाइट योग साधना भट्टी के विषय पर आप हमारे बीच प्रकाश डालेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई तथा मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी मधुबन तपो भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, माता पिता की तपस्या भूमि पर आप सभी आए हैं, तो मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बरसात के मौसम में आप सभी आए हैं। कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो मैंने योगिनी बहन को फ़ोन किया और कहा, बहन जी यहाँ तो बहुत बारिश है, आपके भाई बहन आएंगे तो बहुत कपड़े चाहिए, सूखेंगे नहीं, छाता लाए या और साथ साथ जूते लाए, उस प्रकार से बहुत बारिश है, गर्म कपड़े लाए, माउंट आबू का वेदर तो ऐसा ही है। तो फिर मैंने उनको ये भी राय दी कि आप शांतिवन में बैठे करें, ये भी राय दी। तो तुरंत योगिनी बहन के, नहीं 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 ये पांडव भवन के लिए आ रहे हैं, पांडव भवन के लिए आ रहे हैं और पांडव भवन में ही बैठी करेंगे, चाहे कितनी भी बारिश हो, हम मुश्किल से तो हमें पांडव भवन में बैठी करने का मौका मिला है। तो मैंने पूछा, पहले कभी मिला है मौका पांडव भवन में बैठी करने का मौका मिला है पहले? जी 12 साल पहले। अच्छा, 12 साल पहले बैठी हुई थी? अच्छा, तो कहा कुछ भी हो जाए हम नीचे नहीं करेंगे, हम तो पांडव भवन के लिए आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो इस बारिश के मौसम में भी आप सभी हिम्मत करके पहुँचे हैं, सब कोई भी परीक्षाएं आई होगी, कोई विघ्न आए होंगे, सब कुछ पार करके आप सभी आराम से पहुंच गए हैं ना, आराम से पहुंच गए सभी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? हमने सुना बहुत बारिश थी गुजरात में, बहुत बारिश थी। ठीक है, सब बिल्कुल टाइम पर ट्रेन पहुंची, सब कुछ टाइम पर था। अच्छा, यहाँ तो बहुत कुछ न्यूज़ सुन रहे थे। हाँ, तो चलो आप पहुंच गए, तो आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। हाँ, मधुबन में पहुंच गए, यहाँ भले अपने लिए ताली बजाओ। मुझे ये भी बताया गया कि कुछ भाई बहनों ने अपना आना कैंसिल किया। हाँ, ऐसे भी है ना, जिन कुछ ने कैंसिल भी किया है, सोचा होगा बहुत बारिश है, माउंट आबू का मौसम, यहाँ की बारिश। लेकिन हम कहते हैं जो पहुंच गए, आप बहुत 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 भाग्यशाली हो। देखो आप, हाँ बिल्कुल, आप आए हो तो बारिश थम गई है, अभी फॉगी है लेकिन बारिश नहीं है इतनी। उस समय तो इतनी बारिश थी, बाहर निकलना भी मुश्किल था। तो ये भी मौसम का आनंद है। हमारी बहनें जैसे सवेरे पहुंची, तो मैंने कहा देखो यहाँ इतनी बारिश है, कहा हम यही तो इसी के लिए तो तरस रहे थे। यहाँ तक कह दिया इसके लिए ही तरस रहे थे, मुंबई में कहाँ ये मौका मिलता है ऐसे सूक्ष्म वतन में सैर करने का, मिलता है क्या? वहाँ तो है ही नहीं ऐसे। तो यहाँ आप जैसे सूक्ष्म वतन में सैर करेंगे, तो सूक्ष्म वतन में सैर करना माना सूक्ष्म फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता बनना होगा ना यहाँ, तभी तो सूक्ष्म वतन में सैर करेंगे। तो आप सब यहाँ बट्ठी में आए हो, तो बट्ठी माना पकना। बट्ठी का अर्थ क्या होता है? जिसमें पकते हैं, और केवल पकना नहीं, पक करके परिवर्तित होना, तब कहेंगे बट्ठी में आए हैं। तो परिवर्तन इस बट्ठी का लक्ष्य है। वैसे भी जब कोई भी चीज़ बट्ठी में पड़ती है, बहुत आग तपती है, तो आग तपती है उसमें जो भी चीज़ डाली जाती है वो बदल जाती है, उसका रूप रंग गुण सब बदल जाता है। कितने मिसाल देते हैं ना, अब उसमें बाबा सोने का मिसाल देते हैं, सोना अशुद्ध होता है लेकिन जैसे ही भट्ठे में पड़ा सोना पिघलने लगता, सोना जो खाद है वो निकलने लगती है और सोना शुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध चीज़ शुद्ध हो जाती है। कोयला डालते इतना काला काला कोयला, उसको आग में डालते हैं तो वो जल करके राख बन जाता है, रंग रूप बदल देता है। उसमें हम अगर कोई भी कठोर चीज़ डालते हैं तो धीरे धीरे वो मुलायम बन जाती है ना, बैंगन आलू टमाटर ऐसे डालते हैं आग में तो वो नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई ऐसी नरम चीज़ डालते हैं मिट्टी, तो उनका वो ईंट बनाते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कोई भी कचरा डालते हैं तो वो कार्बन बन के उड़ जाता है। मतलब जो चीज़ अग्नि में पड़ी वो बदल जाती है। तो आप सब भी भट्ठी में आए हो परिवर्तन करने के लिए, तो भट्ठी में तपना है तभी तो परिवर्तन होंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा, और टॉप हेडिंग है जो भट्ठी का जो नाम है वो है डबल लाइट, डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्ठी। तो डबल लाइट होने लिए आए हैं। डबल लाइट माना बिल्कुल हल्के, डबल लाइट माना हल्के के साथ साथ लाइट प्रकाश स्वरूप। तो प्रकाश स्वरूप भी बनना है तो साथ साथ हल्के भी बनना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले तो अपना सारा बोझ बाबा को दे दो। हाँ, मुंबई का जो आपका धंधा है, नौकरी है, परिवार है या जो कुछ भी कारोबार है, वो जो थोड़ा बोझ होगा वो बोझ बाबा को देख करके भट्ठी करना बिल्कुल हल्के होकर। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो आप 3M, हम कहते हैं 3M का मौन रखना होगा। कौन से है 3M? पहले है मोबाइल का, मोबाइल को मौन में रखो। हो सकता है मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं या साइलेंस में रखें अगर अगर ज़रूरी है तो मोबाइल का मौन। फिर दूसरा है मुख का मौन, साइलेंस। हम भले चलो दूसरे कोई बात करते हैं पर आपका बैज वो देखे और वो भी साइलेंस में चला जाए, तो मुख का मौन। तो वो भी M, मोबाइल, मुख और तीसरा है मन। तो मन का भी मौन, ऐसा मन का मौन हो जो बिल्कुल हल्के हो जाए, कुछ भी और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा को सब जिम्मेदारी दे दो, बाबा आप संभालो, मैं तो मधुबन में भट्ठी करने आया हूँ, यहाँ वो बोझ लेकर के नहीं चलना। तभी कहेंगे सच्ची तपस्या, तभी कहेंगे सच्चा फरिश्ता बनने का लक्ष्य, तभी कहेंगे डबल लाइट। तो इसीलिए ये ज़रूर तो आपका लक्ष्य होगा, उद्देश्य तो हमारा बहुत ऊंचा है। वैसे जब कोई आते हैं इस संस्था में तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछते हैं कि आपकी इस संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम यही कहते हैं ना, मनुष्य से देवता बनना। अब देवता तो भविष्य में बनेंगे, यहाँ तो पहले हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण तो बन गए, फरिश्ता बनने के लिए यहाँ आए हो, फिर देवता बनेंगे, उसके पहले घर जाएंगे। और देखो भट्ठी करने आप आए हो, ये महीना दीदी का महीना है, बड़ी दीदी मनमोहिनी, जुलाई का महीना बड़ी दीदी का महीना था। और बड़ी दीदी सदैव यही कहती थी, क्या कहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बड़ी दीदी के पास कोई भी जाते थे कोई प्रॉब्लम लेकर, कोई बात लेकर, तो बड़ी दीदी यही कहती थी, अरे छोड़ो अभी घर जाना है, अभी घर जाना है। और दादी प्रकाशमणि तो सचमुच दादी का एक बड़ा स्लोगन था, कौन सा स्लोगन था, निमित निर्वाण और निर्मल वाणी, ये दादी जी थी। उसका एक टॉपिक भी है आपकी भट्टी में, सुदेश दीदी आपका ये क्लास कराएगी दादी जी के ऊपर। तो इस प्रकार दादी जी से भी हम प्रेरणा लेते हैं, दीदी से भी प्रेरणा लेते हैं। जनवरी महीना आता है तो ब्रह्मा बाबा से, जून महीना मम्मा का, तो हर महीने का अपना अपना महत्व है, परंतु हम सब से प्रेरणा लेते हैं। तो आप यहाँ भट्टी में आए हो, कौन से नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि अभी हम 7 बजे तक हम थोड़ी डायरेक्शन देंगे और आपको इस भट्टी का वो सारा टाइम टेबल बताएंगे। और फिर 7 बजे हमारी योगिनी दीदी आएंगी और आप सबसे मिलेंगे। और फिर 7:30 बजे मधुरवाणी ग्रुप, हमारे सतीश भाई और हल्दर भाई और निरंजन भाई आकर के गीत गाएंगे आप सबके स्वागत में। और फिर आप सभी को कुटोली मिलेगी, लेकिन उसके पहले कुछ आवश्यक इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहेंगे कि आप सभी वैसे तो जो सुख धाम में ठहरे हैं वो हाथ उठाएं, सुख धाम में जो ठहरे हैं। अच्छा हाँ, देखो मोबाइल बजना चालू हो गया। हाँ प्लीज़ अपना मोबाइल स्विच कर ऑफ कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस आती है। अच्छा जो ज्ञान विज्ञान भवन में ठहरे हैं वो हाथ उठाएं, वहाँ कोई ठहरे हैं। अच्छा ओके, बहने जो विशाल भवन में ठहरी है वो हाथ उठाएं थोड़ी। और जो पीछे सदर्शन भवन के पीछे जो मकान है वहाँ ठहरे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा वहाँ भी काफ़ी सारे ठहरे हैं। और टीचर्स सब हाथ उठाएं। अच्छा योगिनी बहन का जो सर के जो सेंटर्स है उसके अलावा और भी कहीं से आए हैं? अच्छा अहमदाबाद महादेव नगर, अच्छा महादेव नगर से कौन आए हैं? अच्छा महादेव नगर जी 14 महादेव नगर से, वल्लभ विद्यानगर से भी आए हैं? वल्लभ विद्यानगर से कौन आए हैं? अच्छा एसआर नगर से भी आए हैं कोई? तो एसआर नगर कहाँ है? ये कहाँ है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, एसआर नगर, कौन आए हाथ उठाए, खड़े हो जाए, एसआर नगर हैदराबाद से। अच्छा अभी जो मुंबई से आए हैं वो सब हाथ उठाएं। अच्छा 109 कितने हैं? 109 कह रहे थे। अच्छा और भी कहीं से आए हैं? और भी कहीं से आए? पंजाब से आए? कहाँ से? लुधियाना, लुधियाना से कौन आए हैं? अच्छा 2 आए हैं। अच्छा और कहाँ से आए हैं जी? पुणा से आए, पुणे से आए, कौन आए पुणे से हाथ उठाए? अकेले आए? अच्छा आप अकेले, ठीक है। तो सब टीचर्स हाथ उठाए फिर से, कितनी टीचर्स आई है? हाँ ये जी 22। अच्छा ये योगिनी बहन का कनेक्शन, अच्छा योगिनी बहन का कनेक्शन के अलावा टीचर्स कौन है? अच्छा जो भी टीचर्स है ना वो यहाँ बैठे, पीछे नहीं बैठे, आगे बैठे, सब टीचर्स आगे बैठे, जो ये फर्स्ट रो ठीक है, बाकी आगे बैठे, यहाँ करके बैठे टीचर्स। और ये भी है कि यहाँ खास बनाया है ताकि जो भाई बहने नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठे। अच्छा लगता है योग करेंगे तो नीचे जो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे ज़रूर बैठ सकते हैं। टीचर्स भले ऊपर बैठे, बाकी भाई बहने जो नीचे बैठ सकते हैं वो ज़रूर नीचे बैठे। बाकी ऊपर बैठे हैं ठीक है, जो बैठ सकते हैं नीचे। तो थोड़े इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, आपका जो नाश्ता, दिन का भोजन और रात्रि का भोजन बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर होगा, क्योंकि नीचे का एक डाइनिंग हॉल तो रोटी बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, नीचे का वो छोटा पड़ रहा है क्योंकि नीचे से भी भाई बहने आते हैं, तो इसीलिए रोटी बनाने लिए एक पूरा डाइनिंग हॉल नीचे का लिया हुआ है। तो वहाँ पर सेवाधारी भी थोड़े होते हैं, मधुबन वाले होते हैं, तो जो पार्टियों में आते हैं भाई बहने या जो भट्टी में आते हैं, आप सबका नाश्ता, दिन का भोजन और रात का भोजन बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर होगा, वहीं जाएंगे। कोई नहीं चढ़ सकते हैं तो लिफ्ट भी है, साइड में लिफ्ट भी है ऊपर जाने के लिए, तो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे ऊपर ही जाएंगे। और टीचर्स जो है, जो मेन बड़ी टीचर्स है, वो तो नीचे रमेश भाई के पास जा सकते हैं, परंतु ऐसे और भी छोटी टीचर्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। अच्छा, दूसरा, अमृत वेले और शाम की चाय अगर कोई लेते हैं तो नीचे के डाइनिंग हॉल में रहेगी। अमृत वेले भी और शाम की 4 बजे की चाय भी वो नीचे रहेगी, बाकी नाश्ता, दिन का भोजन और रात का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में होगा। आपको जो इस प्रोग्राम में सवेरे 10 बजे से आपकी भट्टी शुरू होगी, 10 से 10:30 तक योग होगा और 10:30 से 11:30 क्लास होता है और 11:30 बजे आपको ब्रेक देंगे। फिर अगर किसी को चाय लेनी है तो 11:30 बजे नीचे के डाइनिंग हॉल में चाय मिलेगी, जिसको भी पीना है तो पी सकते हैं। और फिर 12 बजे के अंदर वापस आएंगे, तो 12 बजे आपका एक और सेशन होगा, तो उसमें कौन कौन होंगे वो भी आप बाहर नोटिस बोर्ड पर ये प्रोग्राम सारा लिखा हुआ है, आप देख लेंगे और फिर बताएंगे भी आपको। और फिर 12 से 1 बजे तक आपका क्लास होगा, पहले 10:30 से 11:30, फिर ब्रेक, और फिर 12 से 1, फिर उसके बाद दिन का भोजन, भोजन करके थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद फिर आप 4 बजे चाय आदि ले सकेंगे, वो नीचे ही होगा। 4:30 से 5 बजे तक बाबा को शिक्षक के रूप में पत्र लिखना है, ये बाबा को शिक्षक के रूप में पत्र लिखेंगे आप, और फिर 5 बजे सब वापस यहाँ आएंगे। 5 बजे के अंदर संगठित योग होगा 5 से 5:30, और फिर 5:30 से 6:30 एक क्लास होगा, और 6:30 से 7:30 बजे तक फिर साइलेंस में योग होगा, और 7:30 बजे भोजन करेंगे। और उसमें भी कल बुधवार के दिन आपका रात्रि भोजन सुखधाम में होगा, वहाँ पर छत डाली हुई है तो वहाँ आप करेंगे, जैसे पिकनिक के रूप में आपका भोजन होगा। 7:30 बजे सब वहाँ जाएंगे, और फिर 8:30 बजे कोई ना कोई वरिष्ठ भाई का क्लास होता है, आज भी क्लास होगा, हमको बताया गया कि सूरज भाई आज रात्रि क्लास भी कराएंगे सबके लिए, 8:30 बजे यहाँ पर क्लास होगा भोजन के बाद, और फिर 8:30 से 9:30 तक क्लास होता है। 9:30 बजे बाबा को गुड नाइट करेंगे, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, वहाँ पर चार धाम का चक्र लगाएंगे, और 10 बजे के अंदर सभी विश्राम लेंगे, ताकि सवेरे आप 3:30 बजे उठ सको, अगर जल्दी आ सको तो 3:30 बजे से योग शुरू हो जाता है और फिर 4 से 4:45 तो सबके लिए है, बाकी कोई 3:30 से 4 बजे भी आते हैं। अगर बहुत बारिश है तो थोड़ा सावधानी रखेंगे क्योंकि फिसलन भी बहुत होती है, बहुत बारिश में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम इस प्रकार होगा। कल का प्रोग्राम सवेरे 10:30 से 11:30 सूरज भाई जी क्लास कराएंगे और फिर 12 बजे डॉक्टर सविता बेन क्लास कराएंगे। शाम को 5:30 से 6:30 सुदेश दीदी आएंगे, वो ज्ञान सरोवर में है और कुछ दिनों में वो जा रही है लंदन और फिर अमेरिका, इसलिए यहाँ है। तो सुदेश दीदी आपका क्लास कराएंगी कल शाम को 5:30 से 6:30, फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 योग होगा और फिर रात्रि भोजन सुखधाम में होगा। फिर रात को 8:30 बजे भी क्लास होता है, जो करना चाहे ऑप्शनल है। फिर 6 तारीख को भी इसी प्रकार आपका प्रोग्राम है और रोज का आपको स्वमान मिलता है। कल का स्वमान है मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ और परसों का स्वमान है मैं मास्टर सुख सागर हूँ। तो परसों 6 तारीख 10:30 से 11:30 मोहन भाई, मोहन सिंगल, वो आपका क्लास लेंगे निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति। और 10 बजे सभी पहले योग में आएंगे, 10:30 से 10:30 तक योग, फिर क्लास होता है। फिर 11:30 बजे ब्रेक होगी और 12 बजे आपका क्लास होगा, जिसमें हमारे छोटे लाल भाई है यहाँ मधुबन में, वो बहुत अच्छे अनुभव युक्त क्लासेस कराते हैं, वो लेंगे। और फिर 1:15 बजे शशि दीदी आएंगी और आप सबसे मिल करके आपको सौगात देंगे। 6 तारीख को 1:15 बजे शशि दीदी आ करके आप सबको सौगात देंगी और फिर आप भोजन पर जाएंगे, विश्राम करेंगे और शाम को 5 बजे आपका संगठित योग होगा। 5:30 बजे डॉक्टर सतीश गुप्ता, वो खास शांतिवन से आएंगे आपका क्लास कराने, अंतिम अवस्था अंतिम सेवा। और फिर 6:30 से 7:30 संगठित योग और रात्रि को 8:30 से 9:30 तक फिर रात्रि क्लास होगा और उसके बाद बाबा को गुड नाइट करेंगे। 7 तारीख शुक्रवार को आपके लिए स्वमान है मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। तो 9 से 9:45 पहले चारों धाम की यात्रा करेंगे, फिर 10 बजे संगठित योग, 10:30 बजे उषा बहन खास शांतिवन से आएंगे और आपका क्लास कराएंगे मनसा द्वारा सकाश कैसे दें, उषा बहन आपका क्लास कराएगी। और फिर ब्रेक होगा, फिर 12 से 1 बजे तक सुशील भाई, मधुबन के सुशील भाई आपका क्लास कराएंगे सकाश का प्रैक्टिकल अनुभव। और फिर 4:30 से 5 बाबा को प्रियतम रूप में पत्र लिखना। फिर 5 बजे के अंदर यहाँ आएंगे, संगठित योग होगा, 5:30 से 6:30 आत्म प्रकाश भाई आपका क्लास कराएंगे उड़ती कला में उड़ने की विधि। और फिर 6:30 से 7:30 तक संगठित योग और फिर रात्रि को 8:30 बजे शुक्रवार को दादी जी की वीडियो फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि ये दादी प्रकाशमणि का महीना है तो उनकी एनिमेटेड वीडियो फिल्म देखी है ना, सभी ने देखी है, जिन्होंने देखी है हाथ उठाए, पहले चली थी, अच्छा सब ने नहीं देखी है, तो वो वीडियो फिल्म दिखाएंगे दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी की। और फिर उसके बाद विश्राम करेंगे और 8 तारीख को स्वमान है मैं विजयी रतन हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता करके प्रस्थान है। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है, वैसे अभी तक जो बठिया हुई थी उसमें हम ये जो शुक्रवार के दिन हम लोग छुट्टी देते हैं दोपहर को, क्योंकि कई बाबा की पहाड़ी पर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि जब से बारिश शुरू हुई है तो फिर बारिश के कारण हम बाबा की पहाड़ी पर नहीं जाते हैं, और वैसे भी सनसेट तो दिखाई भी नहीं देता है, तो इसलिए यहाँ क्लास रखते हैं। अगर मौसम अच्छा हुआ, सूर्य दिखाई दिया, फिर तो आपको भेज सकेंगे, नहीं तो आपका क्लास होगा। तो ये मुख्य रूप से 3 दिन आगे का, कल परसों तरसों, ये 3 दिन का आपका कार्यक्रम होगा। बाकी तो और भी कई इंस्ट्रक्शंस आपको हम देना चाहेंगे। अच्छा, कल बुधवार के दिन मुरली क्लास के बाद ओम शांति भवन के आगे वातावरण अनुसार आप सबका ग्रुप फोटो होगा। अगर मौसम अच्छा हुआ, थोड़ी धूप निकली, तब आपका ग्रुप फोटो होगा ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर। अगर मौसम ठीक नहीं है फिर तो नहीं होगा ग्रुप फोटो। इसीलिए मौसम अनुसार जो होगा वैसे ही आपका फोटो होगा, ग्रुप फोटो। और फिर कल बुधवार के दिन, हाँ कल बुधवार के दिन रात्रि का भोजन की व्यवस्था सुखधाम में की गई है। सभी भाई बहनों को 7:30 बजे सुखधाम में पहुंचना होगा कल शाम को। अमृत वेले अगर कोई भाई बहने हिस्ट्री हॉल में योग करना चाहते हैं, कई होते ना कहते हम हिस्ट्री हॉल में योग करें, तो वहाँ पर जो दरवाजे हैं, इस तरफ का जो दरवाज़ा है वो बहनों के लिए, और शांति स्तंभ के पास वाला जो दरवाज़ा हिस्ट्री हॉल का, वहाँ भाई जाएंगे। कई बहनें उस तरफ से जाती है या कई भाई इस तरफ से आ जाते हैं, फिर योग में बीच में से जाते हैं भाइयों की तरफ, इसलिए भाइयों का अंदर हॉल में आने का जो दरवाज़ा है वो शांति स्तंभ के पास वाला है, और बहनों का इस तरफ से है। बट्टी की सेवा के लिए आए हुए सेवाधारी हाथ उठाएं, जो सेवा के लिए आए हैं बट्टी में, बट्टी के लिए सेवा में आए हैं आता। तो फिर अभी जो आपका, अभी आप सबको जब टोली मिलेगी तो टोली लेने के बाद आप सभी जीतू भाई से मिलना, जिन्होंने भी हाथ उठाया सेवादारी के रूप में आए हैं, तो आप जीतू भाई से मिलना, आपको सेवा क्या करनी है वो आपको बताएंगे टोली यहाँ लेने के बाद। गुरुवार शाम 7:30 के पश्चात, गुरुवार 7:30 के पश्चात अनाउंस करें कि बट्टी के सेवादारियों को शुक्रवार प्रातः 6:30 से 7:30 बजे टोली किचन में सेवा के लिए पहुंचना है, वो आपको बताएंगे जीतू भाई। तो आप गुरुवार शाम को, शुक्रवार को सवेरे 6:30 से 7:30 बजे तक टोली किचन में आपको सेवा करनी है, तोशे बनाने होंगे जो सेवाधारी के रूप में आए हैं। अच्छा, ओम शांति भवन में जो मुरली क्लास चलता है 6:30 से 7 तक योग होता है, और 7 बजे मुरली होती है, तो जो मुरली के समय जो आगे का सोफा है ओम शांति भवन में, बहनों के तरफ वो टीचर्स बहने बैठती है और कुछ और सीनियर्स बैठते हैं, और भाइयों के तरफ मधुबन निवासी भाई बैठते हैं, तो आगे की सोफा पर और भाई बहने नहीं बैठे, ये आप सबसे अनुरोध रहेगा, नहीं तो फिर आपको उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे मधुबन के भाई बैठते हैं, और यहाँ टीचर्स बहने बैठती है बहनों के तरफ, तो वहाँ माताएं और भाई न बैठे प्लीज़। और क्लास पूरा होने के बाद टोली आपको वहाँ नहीं मिलेगी ओम शांति भवन में, क्योंकि आप कल जाकर देखना पूरा रेनोवेशन हो रहा है ओम शांति भवन, ऊपर की छत तो दूसरी डाली है, क्योंकि टीन के पतरे थे और वो टीन के पतरे जब बारिश होती थी तो बहुत आवाज होता था, तो अंदर का भी जो सीलिंग है उसको भी सारा तोड़ा गया है और ऊपर से भी नया सीलिंग डाला है, तो इसीलिए सारा काम चल रहा है और बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है चारों तरफ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से जाएंगे। और हॉल में तो बैठ सकते हैं पर लाल लाइट नहीं है हॉल में, तो योग भी सफ़ेद लाइट में ही होगा, तो इसीलिए थोड़ा उस बात का भी आपको ध्यान पर दे रहे हैं। ओम शांति भवन में मुरली क्लास के समय सोफे की पहली लाइन मधुबन निवासी और टीचर्स बहनों के लिए खाली रखेंगे, आप सेकेंड थर्ड रो से बैठ सकेंगे। और क्लास पूरा होने के बाद टोली आपको, जो मधुबन की टोली हमेशा मिलती है, वो या टोली डिपार्टमेंट में मिलेगी, वहीं से टोली लेंगे। कई बार या टोली भुट्टा मिलता है तो वो फिर यहाँ ही मिलता है, तो ये अलग अलग होगा, अनाउंस करेंगे। और पानी और बिजली की कृपया बचत करें, क्योंकि उस पर ध्यान देंगे। अभी तो बारिश हुई है, जब बारिश की सीजन अभी शुरू नहीं हुई थी तो यही अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इस साल आबू में बारिश कम पड़ेगी। अब पता नहीं, अभी तक तो अच्छी पड़ी है, आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन पानी की ज़रूर बचत करें, बिजली की बचत करें। और पानी और बिजली इस पर ध्यान देंगे, कमरे से बाहर जाते समय लाइट, पंखा एवं नल अवश्य बंद करें। वैसे तो पानी की अभी कमी नहीं है, फिर भी जितना हो सके थोड़ी बचत करें तो अच्छा है। अच्छा, मेडिटेशन हॉल के बहनों के तरफ लिफ्ट है, यहाँ पर लिफ्ट है, अगर कोई बुज़ुर्ग भाई बहने सीढ़ियों से नहीं चढ़ना चाहें तो यहाँ साइड में लिफ्ट है, उस लिफ्ट से आप आ सकते हैं, यहाँ बाजू में लिफ्ट है, तो ये आपके ध्यान पर दे रहे हैं। और अगर कोई आपको भुट्टा वगैरह कुछ टोली मिलती है तो कृपया आंगन में नहीं खाएंगे, डाइनिंग हॉल में ही जा कर के खाएंगे सुबह। तो ये विशेष कुछ हमारी अनाउंसमेंट्स है, बाकी तो भट्टी करने आप सभी आए हैं, मुझे खुशी है आप सभी मधुबन में आए हैं। हम तो यही चाहेंगे बिल्कुल मौन में रहे। एक प्रण कीजिए कि मुझे 3 दिन बिल्कुल साइलेंस में रहना है, कर सकते हैं? जो तैयार है उसके लिए हाथ उठाएं, आए ही इसके लिए हो। अगर कोई दूसरा बातचीत कर रहा है तो उनको आप इशारे से कह सकते हैं साइलेंस। और देखो, जैसे ही आप यहाँ पहुँचे तो आपको ये विजय माला पहनाई गई है ना, इसको हम विजय माला कहते हैं, और ठप्पा लगाया, ये जो बैज दिया वो इसे ठप्पा है और ये विजय माला है, तो आपको ये इशारा मिला कि अब आपको विजयी बनना है। मुख का, मन का, मोबाइल का मौन रखना है और परिवर्तन करना है। तो रोज़ एक संकल्प करें कि मुझे क्या परिवर्तन करना है, पहले से ही तैयार हो जाए, अमृत वेले ही अपने अंदर में ये संकल्प करें कि आज मैं इस संस्कार पर विजय प्राप्त करूँगा, आज मैं इस कमी को दूर करूँगा, आज मैं इस विधि से अपने आप को बदलूँगा। तो रोज़ 3 ही दिन ये संकल्प अपने अंदर करें। किसके अंदर अगर क्रोध का संस्कार है तो क्रोध तो करना ही नहीं है, लेकिन आवाज़ भी नहीं करना है, क्रोध तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल साइलेंस में रहना, ये आपसे विशेष अनुरोध होगा। और फिर साथ में मुझे बदलना है, दूसरा बदले ना बदले, हमको उनको नहीं देखना है, हमको अपने आप को देखना है, बस हमको खुद को देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, क्या खामी है, तो क्या मुझे बदलना है अपने अंदर। और मन ही मन में ये संकल्प कीजिए कि यहाँ से मैं एकदम बदल कर जाऊंगा या जाऊंगी, बस यही लक्ष्य रखें। एक बाबा दूसरा न कोई, मेरे सब संबंध एक बाबा से है। चाहे कोई भी संबंध लौकिक हो, चाहे आप उसमें युगल रूप में भी यहाँ है, या माँ बेटी है, या पिता है, कोई भी, लेकिन यहाँ पर हम सब आत्माएं भाई भाई है। लौकिक संबंध का बिल्कुल यह भान न आना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान पर रहे और आप बस एकांकी हो जाइए। ऐसे नहीं मेरा युगल आया कि नहीं, मेरी युगल आई कि नहीं, वो आएगी या आएगा वो जाने। आप बाबा के साथ हो, बाबा के साथ ही सब संबंध है, न्यारे प्यारे हो करके रहना। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दुनिया की बातों से दूर, झरमुई झगमुई से दूर, समाचारों से दूर, आवाज़ों से दूर। हाँ, मुंबई में तो कितना शोरगुल है, कितनी आवाज़ है, कितनी ट्रैफिक है, क्या नहीं है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे स्थान पर आए हो, इसका पूरा पूरा आप एडवांटेज लें। हम तो आपको यही कहेंगे, फिर पता नहीं कब मौका आएगा, क्योंकि समय को भी आप देख रहे हो। अगर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार यही ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अगर कुछ होगा तो अचानक होगा, अचानक होगा। हाँ, मुंबई वालों के तो बिल्कुल अचानक होगा। हाँ, मुंबई को तो बाबा यही कहते हैं, मुंबई तो जाएगी पानी में। अब पानी बहुत सुखाया है, बहुत बड़ा बना दिया है मुंबई को, कितनी ज़मीन ले ली है समुद्र की, तो मुंबई तो समुद्र तो वापस लेगा ना, ज़मीन की नहीं लेगा। पर पार्ला तो बहुत नज़दीक है सागर के। हाँ, तो इसीलिए अचानक का पाठ सदा याद रखना। तो तीन शब्द बाबा कहते, अचानक, एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास विशेष रूप से अशरीरी बनने में, तो अशरीरी बनना है क्योंकि अंत में यही काम आएगा, जो बाबा कहते हैं एक सेकंड का पेपर होगा, वो लास्ट सेकंड जो होगा, उस समय केवल बाबा की याद रहे और कोई याद न आए, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं एक मिसाल देती हूँ एक बहन का। मैं श्रीलंका गई थी, तो श्रीलंका में पूरा प्रोग्राम करके वापस एयरपोर्ट जा रही थी, वापस भारत आने के लिए। तो जो बहन हमको सेंड ऑफ करने के लिए आई, एयरपोर्ट पर लेकर आई, वो अपना अनुभव सुना रही थी। ऐसे ही वो ड्राइविंग भी कर रही थी और अपना अनुभव भी सुना रही थी कि ये जो मेरा बाकी का जीवन है, ये सब शिव बाबा के लिए है। तो मैंने कहा, क्योंकि बिजनेस लेडी थी, अच्छी कमाई थी उसकी, तो मैंने कहा कि ऐसे किस आधार पर कह रही हो? तो वो उसने कहा कि मुझे बाबा ने नया जीवन दिया। तो क्या नया जीवन दिया? क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत बड़ा भूकंप आया था, कुछ साल पहले की बात है, इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप आया था, तो सुनामी आया था भूकंप के बाद, सागर के नीचे भूकंप आया, तो इतना सुनामी आया जो इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिर श्रीलंका को भी लगा था। तो वो जो बहन थी, वो अपनी दो सखियों के साथ सागर के आगे में टहल रही थी, सागर किनारे टहल रही थी तीनों बहनें, और अचानक सुनामी आया, इतना ज़ोर से वो लहर उठी, और वो लहर जैसे उठी, इन तीनों बहनों को वो लहर ने जैसे सागर में धकेल दिया। और उसी समय उसने कहा, बाबा बाबा। हाँ, बाबा याद आया उसको, उसने तुरंत कहा बाबा, क्योंकि अच्छी योगिन आत्मा थी, तो बाबा कहा। और सचमुच एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? कि जो दो बहनें थी वो ज्ञान में नहीं थी, ये ज्ञान में थी। तो वो दो बहनें जो थी, वो तो वो लहरों ने तो उसको ले गया, ले गई लहरें सागर में, वह डूब गई होगी। लेकिन एक ऐसी लहर आई जिस समय उसने कहा बाबा, तो बाबा ने कैसे इसकी रक्षा की, वो उल्टी लहर आई और इसको धरती पर फेंक दिया, माना बच गई। हाँ तो देखो बच गई, क्योंकि इसने क्या कहा बाबा। देखो तो बाबा अंत में ऐसे बाबा याद आए, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो फिर वो बहन बता रही थी कि मैं भी जा रही थी, वो दो फ्रेंड्स तो हमारी गई, लेकिन मैं भी जैसे जा रही थी पर बाबा को याद किया, तो बाबा ने मुझे ये नया जीवन दिया है। तो मेरा बाकी का जीवन जो है वो सब बाबा की सेवा के लिए। तो जो उसको माँ सेवा देते हैं वो फटाफट वो करती है, और बहुत कुछ उनका सहयोग है, क्योंकि उसको एक ही बात बुद्धि में है कि बाबा ने मुझे ये जीवन दिया है, नहीं तो वह भी जा सकती थी। तो कहने का भाव है, जो बाबा हमें बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चे लास्ट का पेपर एक सेकंड का होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, और जो पेपर होते हैं ना एग्जामिनेशन पेपर होते हैं, वो एग्जामिनेशन पेपर कहाँ होंगे, कब होंगे, कितना कैसे होंगे, ये सब बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या होगा ये पता नहीं। वो तो वहाँ ही क्वेश्चन पेपर पता चलता है, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर आउट है, क्योंकि एक सेकंड का क्वेश्चन पेपर है कि अंत में कौन याद आया, बस एक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाबा याद आया हाँ या ना, अगर ना तो फेल, हाँ तो पास, लेकिन हाँ और ना यही क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन पहले से आउट है, परंतु कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा वो पता नहीं। इसीलिए एवर रेडी, सरप्राइज टेस्ट आती है तो एवर रेडी रहना पड़ता है ना, कभी भी टेस्ट हो तो। इसीलिए ये पेपर आएगा तो हर वक्त रेडी होना चाहिए, क्योंकि अचानक होगा, और अचानक होगा तो एवर रेडी रहना होगा, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हर मुरली में सावधान करते रहते हैं, बच्चे अशरीरी हो जाओ, पांच स्वरूपों को याद करो, एक सेकंड में आओ, कर्म में आओ, फिर कर्म से न्यारे हो जाओ, सच्चे कर्म योगी बनो, कर्म से योग नहीं, लेकिन कर्म करते बाबा से योग, उसको सच्चा कर्म योगी कहेंगे। पर उसके लिए ये तीन बातें सदा याद रहे, बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए, हम हद के सन्यासी तो नहीं है ना, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक है बिल्कुल भौतिकवादी, मुंबई तो बिल्कुल भौतिकवादी ही है ना, मायावी नगरी बाबा कहते हैं, नरडेसावर बाबा कहते हैं, कमर्शियल सिटी है ये, पैसा 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 वही, तो एक तरफ बिल्कुल भौतिकवाद और दूसरी तरफ एकदम सन्यास। पर बाबा ने हमको मध्य मार्ग सिखाया है, भौतिकवाद भी नहीं और सन्यास भी नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है, न छोड़ना है न फंसना है न नया जोड़ना है, ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है, छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, लेकिन क्या करना है, तोड़ निभाना है, बस तोड़ निभाना है, ये ज़रूर करना है, नहीं तो बाबा कहते हैं कि कायर कहलाएंगे, है ना। अर्जुन को यही कहा भगवान ने, युद्ध करो युद्ध करो, वो तैयार नहीं था, परंतु कैसे भगवान ने उनको नष्टोमोहा बनाया, किस आधार पर नष्टोमोहा बनाया, क्योंकि अंत में इसी में ही वो घुटने टेका ना अर्जुन भगवान के आगे, उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा था, तो भगवान ने कितनी युक्तियां उसको बताई मोह नष्ट करने की। अगर देखिए सारा गीता का सार वही है, पहला मोह नष्ट करने लिए क्या ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान कि उनको आत्मा देखो, फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया उनको, अपना स्वमान याद दिलाया, तुम कौन हो, क्षत्रिय हो, तुम योद्धे हो, कायर मत बनो। तीसरी बात क्या याद दिलाई उसको कि आप इस युद्ध में अगर विजयी बनेंगे तो तुम स्वर्ग का राज्य लेंगे। फिर चौथी बात क्या उसको कही कि ये सब मरे हुए देखो, सब मरे पड़े हैं, शमशान दिखाया। और फिर जब तो भी उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा था तो भगवान ने अंतिम ब्रह्मास्त्र क्या छोड़ा, क्या उनको कहा कि ये तुमको कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। वो तो मित्र को देख रहा था कि ये मित्र मेरा कह रहा है, पर ये भगवान मुझे श्रीमद दे रहा है ये उसको समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए प्रश्न 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 करता रहा। परंतु जब उसको ये साक्षात्कार हुआ कि ये कौन मुझे कह रहा है, तब उसको रियलाइजेशन हुआ और फट से घुटने टेक दिए, कहा भगवान अब आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूँ। उसके पहले मोह ही उसका नष्ट नहीं हो रहा था, उसका बहुत विस्तार है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने का कितना सुंदर ज्ञान दिया है। चाहे ड्रामा का ज्ञान देखो, चाहे आत्मा का ज्ञान देखो, चाहे कर्मों का ज्ञान देखो, जो भी बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है वो सब नष्टो मोह बनने के लिए ही है। और जो भी हमें मर्यादाएं बताई है, नियम बताई है, वो सब समय अनुसार बिल्कुल सार्थक है। बिल्कुल इस समय की ही आवश्यकता है। भोजन कैसा होना चाहिए, संग कैसा होना चाहिए, और बाबा ने उस दिन कहा ना, आत्मा का ये भोजन है मुरली। परसों बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने कहा मुरली मुरली मुरली, तीन बार मुरली शब्द का। तो यहाँ कोई मुरली मिस तो नहीं करते हैं? जो कभी कभी मिस करते हैं हाथ उठाए, कभी नहीं? अच्छा, एक हाथ उठा रहे, बाकी चलो क्लास में नहीं जा सकते हैं, पर आजकल तो मोबाइल पर तो सब कुछ मिलता है। तो मुरली कभी मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए पर मुरली कभी मिस नहीं करना। बाबा कई बार कहते हैं कि अचानक मुरली में ऐसी कोई बात आ जाती है जो जागृत कर दे, कहीं थोड़ी माया मूर्छित करने की कोशिश कर रही हो और मुरली आपने पढ़ी तो एकदम जागृत हो जाएंगे। मुरली है हमारे लिए संजीवनी बूटी, मुरली है हमारे लिए आत्मा की शक्ति। तो इसीलिए बाबा मुरली पर इतना जोर देते हैं। तो सभी आए हो भट्टी में, बहुत अच्छा। तो कहा योगिनी बहन आई, योगिनी बहन को बुला के ला। उन्होंने कहा मैं 7 बजे आऊंगी। कौन बुला के? ठीक है, आ गई है। कौन, कोई गया है उनको लेने के लिए? गए हैं, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना हो तो पूछो। योगिनी बहन सबसे मैं ओम शांति भवन में लिफ्ट नहीं है, नहीं वो लिफ्ट अभी पूरी बनी नहीं है क्योंकि उसको ऊपर तक एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक बहुत समय तक तो कंस्ट्रक्शन भी रुका हुआ था, रिनोवेशन रुका हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ माउंट आबू में, इसीलिए अभी तो चल रहा है काम पर लिफ्ट अभी तक पूरी नहीं है, तो इसीलिए चढ़ाई चढ़नी होगी। नहीं तो यहाँ पर हिस्ट्री हॉल में टीवी है, वहाँ पर बैठ सकते, जिसको चलने की प्रॉब्लम है तो हिस्ट्री हॉल में बैठ सकते हैं, और अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर यहाँ बड़ी स्क्रीन है आंगन में, वहाँ पर भी बैठकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना है क्या? जी हाथ उठा, जी जी क्या? सभी क्लासेस आपके यहाँ ही होंगे, मुरली क्लास ओम शांति भवन में नहीं, यहाँ मुरली क्लास नहीं होगा, मुरली क्लास ओम शांति भवन में होगा, बाकी हिस्ट्री और जो नहीं चढ़ सकते हैं हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, और यहाँ बग्गी है उस बग्गी में बैठ के भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ एक बग्गी है, सवेरे के समय वो बग्गी चलती है, उसको भी ढका हुआ है, तो वो बग्गी में बैठ करके ऊपर ओम शांति भवन जा सकते हैं। जिनको कुछ प्रॉब्लम हो, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, थोड़ी सी चढ़ाई है ओम शांति भवन की, बाकी मुरली ओम शांति भवन में बाकी क्लासेस आपके सब यहाँ होंगे। ठीक है, और भी कुछ पूछना है किसी को? तो चलो हम सब योग में बैठते हैं, और उसके बाद योगिनी बहन आएंगी और 7:30 बजे तक वो कुछ मिलेगी आप सबसे, और उसके बाद फिर मधुरवाणी ग्रुप होगा, उनके गीत गाएंगे, वेलकम सॉन्ग होगा, फिर आपको टोली मिलेगी, फिर रात को भोजन के बाद सूरज भाई का क्लास ऐसे सुनाएं, तो फिर आप जो आना चाहे आ सकते, बाकी कल सुबह भी सूरज भाई का क्लास होगा 10:30 बजे। ठीक है, ओम
बहुत आती है मेरे बाबा, तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है मेरे बाबा, तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो ने पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है मेरे बाबा, तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं, तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनियाए गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की भी बात है, परम आनंद की बात है कि हम सबको बहुत समय के बाद सबका लक्ष्य भी था, सबकी डिमांड भी थी कि हमारे को मधुबन में एक बार जरूर पट्टी करने का मौका मिले। तो आखिर वो दिन आया आज। ठीक है, इस बारी यहाँ सब जगह कंस्ट्रक्शन चलता है, हमें 100 की छुट्टी मिली, वो भी बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने खास हमें कहा कि आप पार्ला सेंटर के ही 100 लोग आ सकते हैं, आजू बाजू के माना सेंटर सब सेंटर क्लासेस उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आवे। तो हमने भी कहा ठीक है, आप हमें 100 की भी परमिशन दे दो। तो उन्होंने परमिशन दे दिया। बहुत भाई बहनों ने हमको डिमांड किया, बहुत भाई बहनों ने बोला कोई नहीं आवे तो हमको बोलना, ऐसे बोलना, परंतु एक को बोलो तो सबको बोलना होता है, इसलिए हमने फिर यही प्रोग्राम रखा। परंतु मैं कहेंगी कि जैसे ही हम भी मधुबन में आए, हमें बहुत बहुत पहले की पुरानी यादें ताजी हो गई कि कैसे बाबा हमें, हम आते थे बाबा के रूम के बाहर, थोड़ा आगे ऑफिस है वहाँ, बाबा ऐसे अपनी भव्य पर्सनालिटी बाबा की थी, हम याद कर रही थी कि कैसे बाबा पीछे हाथ ऐसा करके खड़े होते थे, और जैसे हम आते थे हमको तो नकी लेग से ही हमारी रुवाटी खड़ी हो जाती थी कि हम जाएंगे बाबा मिलेंगे, और सचमुच बाबा बाहर खड़े होते थे और ऐसी रूहानी दृष्टि से हमें भरपूर कर देते थे।
आज मैं वही फीलिंग को लेकर के कल मैं आई तो भी मेरे को वही फीलिंग थी। और हमने बहुत बहुत हमें याद ताजी हो गई अभी झोपड़ी में, कैसे बाबा हमें झोपड़ी में मिलते थे। वो दिन भी प्यारे थे, ये दिन भी प्यारे हैं। वो दिन में बाबा हमारे साथ है, साथी थे, आज भी बाबा हमारे साथी है, ऐसी ही फीलिंग है। लेकिन बाबा को मिलने का, बाबा के रूम में जाते थे, छोटा सा आधा फ्रूट कोठरी थी, आधा रूम में बाबा रहते थे। और जो बाहर पैसेज है ना, हम याद कर रही थी, वो पैसेज में बाबा गर्मी के दिनों में ऊपर की छत खुली थी, तो गर्मी के दिनों में बाबा अपनी खटिया जो है वो बाहर डालते थे और वहां सोते थे। हमेशा गर्मी में बाबा बाहर सोते थे। वो उस समय सब खुला था, इतना भीत ऊपर और ऊपर से छत ऐसी, ये सब नहीं था, सब खुला था उस समय। तो बाबा के साथ हम वहां खेलते थे, बाबा रोटी मक्खन खिलाते थे। आज सब याद, बाबा के रूम में बैठे कलम आते ही तो सब याद कर रही थी मैं। बहुत अच्छी तरह से वो मीठी मीठी यादें हमको आ रही थी। बहुत समय के बाद मधुबन में रहने का हमें मौका मिला। बाबा हमारे साथ वहाँ ही, बाबा का रूम है ना उसके बाहर, बाबा या तो ये पीछे के पैसेज में बाबा हम लोगों से खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। जो तुम्ही से खाऊं खेलूं, प्रैक्टिकल हमने बाबा का ये अनुभव किया। हिस्ट्री हॉल में हम देख, बाबा हमारे साथ बैठते थे। कोई भी गुरु ऐसा कोई शिष्य के साथ खाना नहीं खाएगा, लेकिन बाबा हम बच्चों के साथ हर गुरुवार को, जब भी गुरुवार होगा, बाबा ब्रह्मा भोजन सब बच्चों के साथ, जितने भी मधुबन में तो उस समय आते थे इतने, कोई ज्यादा 300 आए माना तो बहुत हो गया। तो बाबा हमारे साथ ब्रह्मा भोजन करते थे। और फिर ऊपर बाबा हिस्ट्री हॉल के ऊपर टेरेस है ना, वहाँ बाबा हम लोगों के साथ, शीलूबेन को भी ये सब अनुभव है। हम और शीलूबेन साथ साथ थे। शीलूबेन तो डॉक्टर बनने वाली थी, फिर उनको ज्ञान मिला और शीलूबेन इधर आ गई। मुंबई में ही जयहिंद कॉलेज में पढ़ी हुई है शीलूबेन। तो हम लोग साथ साथ में वाटरल्यू मेंशन में जाते थे। तो हिस्ट्री हॉल के ऊपर भी बाबा हम लोगों के साथ पिकनिक करते थे। बहुत अच्छा लगता था बाबा हमेशा। हमने जैसे दादी सुनाती है ना कि कभी भी बाबा के कपाल में कोई चिंताओं की रेखाएं नहीं देखी, तो बाबा हमेशा लाइव पर्सनालिटी बाबा की थी। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बाबा में इतना ही बाबा में था। तो सचमुच हमको वो दिन जो है वो आज याद आ गए। झोपड़ी में तो बाबा इतनी अच्छी तरह मिलते थे, और बुलबुल करके दो पक्षी थे वो भी बाबा के आजू बाजू आजू बाजू, शिलुबेन याद है ना, आजू बाजू आजू बाजू बाबा के घूमते थे। और सच्ची बाबा अव्यक्त हुए ना, उनके बाद वो बुलबुल आती ही नहीं थी, उनके बाद वो आती ही नहीं थी। लेकिन जब बाबा थे तब हमेशा, मेरे को याद है कि हम अक्टूबर में 68 की अक्टूबर में, जनवरी में बाबा अव्यक्त हुए, पर मैं दिवाली वेकेशन और मई वेकेशन में इधर आके रहती थी। तो हम दिवाली वेकेशन में आई थी तो बाबा बहुत हमने याद किया। झोपड़ी में से अभी पसार हो रही थी, बाबा बहुत उपराम स्थिति में थे। हम लोग बुलबुल छोटे थे ना, तो हम बाबा को ये किया वो किया, ये सुनाया ये प्रदर्शनी किया, जो भी बाबा को सब समाचार हम लोग सुनाते रहते थे। मेरे साथ एक हिंग वाली मणिबेन माता थी, वो भी मेरे साथ, गाम देवी की वो माता थी। हम दोनों यहाँ रहते थे, आए थे। और बाबा ने झोपड़ी में उसको मम्मा की साड़ी, क्योंकि मम्मा 64 में गई है, 67 की बात है, 65 में शरीर छोड़ा, ये 68 की बात है। तो मम्मा की साड़ी होंगी, वो इतनी माता खुश, इतनी माता खुश कि देखो बाबा ने मेरे को मम्मा की साड़ी दिया है, मम्मा की साड़ी मेरे को मिली। वो हिंग वाली मणिबेन ने बहुत सेंटर खोले थे, तो ऐसे नाम ही उसका था वन देवी छाप हिंग है ना, वो उनका था। तो सब हम लोग हिंग वाली मणिबेन ही बुलाते थे उसको। तो हम दोनों यहाँ आए हुए थे, तो हमने देखा कि बाबा की स्टेज इतनी उपराम थी। बाबा, हम लोग बोलते रहते थे ये वो, बाबा उपराम स्टेज में चले गए थे। तो ऐसी कई यादें जो बाबा के साथ की हमारी है, हमें याद है एक बार मीराबेन को हम लोग साथ में आए थे, बुखार आ गया तो बाबा ने वहां बैठे भी, बाबा रोज पूछता था आज कौन बीमार, बाबा को सब ख्याल रहता था। तो संतरी दादी को बोला जा उसको बुखार आया है ना उसको पपीता दे के आ। बाबा का ऐसा केयरिंग नेचर था पूरा। और बाबा, हम रात को सब कन्याएं बाबा के साथ घूमती थी, और मधुबन में सब हम चाखड़ी पहनते थे उस समय, लकड़े की चाखड़ी आती थी ना, बाबा भी वही पहनता था। तो वो सुखड़ का धूप लेके बाबा, हर एक ट्रेनिंग सेंटर ही था उस समय, ये पोर्शन ये सब भाग था, ये बाद में बना है, निर्वेर भाई वाला जो है वो था, थोड़ा थोड़ा सब था, ट्रेनिंग इंद्रप्रस्थ था, पर ये बाद में बना है हॉल। जब 74 में बना ना, तो नहीं था, वही मैं कह रही हूँ, जब हिस्ट्री हॉल छोटा पड़ने लगा, बाबा आते थे तभी तभी ये हॉल, दादी ने कहा तो 700 लोग उसमें शायद बैठ गए थे, तो सभी खुश थे कि ये देखो बड़ा हॉल बन गया, बड़ा हॉल बन गया। उसके बाद तो फिर हमारा 74 बोला ना, और 83 में अपना ओम शांति भवन बन गया। तो बाबा सब रूम में, बाबा खुद घूमते थे ये एज में 93-94 में, और बाबा सब रूम में जाते थे और ऐसा ऐसा करके ये धूप का एक धुमाड़ा सब जगह लगाते थे, जहाँ जहाँ भाई बहने होते थे रहते थे वहाँ वहाँ वो सुखड़ का धूप है ना, मधुबन का एक वातावरण ही अलग हो जाता था। अभी भी ऐसा है, क्योंकि ये तो बाबा की, हमारी दादियों की तपस्या भूमि है, तो यहाँ आना माना हमारा बहुत, आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली मैं कहेंगी आत्माएं हो। और शीलू बहन ने खास बहुत आप लोगों के लिए टॉपिक्स भी अच्छे रखे हुए हैं, जिसमें योग क्या है, विधि क्या है, और संकल्पों की हमारी खजाना हमें कैसे जमा करना है, संकल्पों का खजाना को, क्योंकि संकल्प की ही हम शक्ति कहते हैं। तो जब यहाँ आप सब ये भट्टी में आए हुए हो, तो ये जरूर दृढ़ संकल्प करना कि हमारे जो भी पुराने संस्कार है, उस पुराने संस्कारों को हमें विदाई दे देना है, और हमें कैसा बनना है, निर्विघ्न हमें बनना है। तो संकल्पों का खाता जो है वो हमें जमा का खाता हमें करना है, जमा करना है। देखो दुनिया में भी एक होता है, अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में चलाया था, एक होता है उसको जीरो लगाओ तो कितना होता है, 10 हो गया, फिर जीरो, जीरो 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 बढ़ाते जाओ तो वो क्या होता है, जमा पैसे का, जमा का खाता बढ़ता जाता है। वैसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हमारा जो मन है, वो मन को हमें संकल्प करके हमें उनका भी जमा का खाता जो है वो हमें सूक्ष्म में बढ़ाते जाना है। ये कब बढ़ सकता है, हमारे पास ऐसे दादियों के बहुत एग्जाम्पल है। हमारी प्रकाशमणि दादी जो थे, उन्होंने कैसे दृढ़ संकल्प किया, ये बात है दृढ़ संकल्प करने की। और जैसे पुराना संस्कार हमारे खत्म होते जाएंगे, विदाई लेते जाएंगे, तो हमारा जमा का खाता जो है वो बढ़ता जाएगा। हमें व्यर्थ संकल्प जो करते हैं, वो व्यर्थ संकल्प को क्या करना है, समाप्त करना है। हमको सुनते हुए भी कोई की बात व्यर्थ है तो नहीं सुननी है, देखते हुए भी कोई चीज व्यर्थ है तो हमें नहीं देखनी है। हमारे सामने ये दादी का एग्जाम्पल है कि दादी जी हमेशा दृढ़ संकल्प किया। ये ओम शांति भवन का इनॉग्रेशन हो रहा था, मैं खुद अपने देखा हुआ है मैंने, दादी कैसे वहाँ खड़ी रहती थी, कैसे जाती थी समय पर। दादी को था, दादी ने डेडलाइन दे दिया था कि 6 फरवरी को हमको 83 में हमको उद्घाटन उनका करना ही है। तो दादी ने जितने उस समय सेंटर थे, जितने लोग थे, सभी को, जहाँ कारपेंटर थे उस सेंटर से कारपेंटर को बुला लिया, जिस सेंटर पर कड़िया लोग आते थे वहां से वो बुला लिया, जहां से टेलर लोग आते थे वहां से वो बुला लिया दादी ने, जो जो जहां जहां बनाने के लिए जरूरत थी पूरा करने के लिए वो दादी ने सबको बुला लिया। और समय पर, आपको 15 दिन पहले भी ऐसे लगेगा, अरे ये ओम शांति भवन का उद्घाटन कैसे होगा, इतना तो कारोबार बाकी है, इतना काम बाकी है, कैसे होगा। लेकिन दादी ने मेरे को भी फोन किया, मुंबई में भी मेरे को कहती है कि ये सब ओम शांति भवन तो बहुत अच्छा बन गया है, पर यहाँ ऐसे सब जो दीवार है ना वहाँ खड्डे खड्डे किए थे और उसमें स्पीकर रखे थे तो वो इको करने लगे। तो दादी ने फोन किया कि तू कुछ भी कर, लेकिन कोई भी साउंड इंजीनियर को लेके आ, और ये ओम शांति भवन में सब कुछ अच्छा हो गया है परंतु इको बहुत पड़ता है। तो हमने अपने इंटीरियर जो हमारे पास आते थे, जिसने पार्लर में किया था लक्ष्मीकांत भाई ने, उनको पूछा, मैंने कहा कि कोई साउंड इंजीनियर है, दादी का फोन आया है, हमको जल्दी में लेके जाना है, उद्घाटन होने वाला है। तो उसने कहा कि इंडिया में 3 ही लोग है, खाली इंडिया में 3 लोग है और तीनों मुंबई में ही रहते है, एक बरजोर करके है और तीनों पारसी है, एक बरजोर करके है लेकिन वो बहुत गुस्से वाला है, आप नहीं हैंडल कर सकेंगी। फिर मेरे को जाल मिस्त्री का, सबको मालूम है जाल मिस्त्री का नाम दिया, तो जाल मिस्त्री का जब नाम दिया तो हमने उसको फोन किया, तो मैंने फोन किया तो मेरे को सीधा बोला पार्टी कौन है, तो मैंने कहा पार्टी तो कोई नहीं है, हम बहने हैं और आप एक बार तो सेंटर पर आओ। तो वो आए सेंटर पर, दूसरे ही दिन आए, और आए तो सीधा मैं उसको बाबा के रूम में लेके गई, उस समय हमारा डाइनिंग रूम जो भी है वो बाबा का रूम था, तो मैंने वहां उनको बिठाया, उसको इतना शांति का अनुभव हुआ, उसको बहुत अच्छा। बाबा ने, बाबा को जिसके पास कार्य कराना होता है बाबा अपने आप ही अनुभव कराता है, ये हमको अनुभव हुआ है। तो बाबा ने टच किया और उससे बोला, मैं वो पारसी थे, सीधा बोला मैं पैसा वैसा कुछ नहीं लेने वाला हूँ आप लोगों से, और आप चलो, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अभी कल ही चलो ऐसा बोला। तो मैं उसको लेके आई, हमने फटाफट टिकट निकाल के लेके आए उसको। अच्छा, जब यहाँ हम लोग आए तो उनको चिंता हो गई, अरे इनकी दादी भी बहन है, लेडीज है, पता नहीं मेरा सुनेंगी कि नहीं, ये सब क्या खड्डे खड्डे कर दिया, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ग्राउंड में ही करते थे ये लोग अपना लेक्चर, कोई जरूरत नहीं थी बनाने की। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी दादी का आउटलुक बहुत ब्रॉड है, ऐसा नहीं होगा, जो आप बोलेंगे ना वो दादी सुनेंगे आपका। और इन्होंने वहां बैठ के पूरी साउंड सिस्टम फिलिप्स से सामान मंगाया, किया, सब किया रहे, और अच्छी तरह से उन्होंने दादी को ड्रॉइंग करके सिस्टम पूरा बताया। और सचमुच जब अव्यक्त बाप दादा आए तो लास्ट व्यक्ति भी, जैसे बाबा का तो विस्परिंग साउंड होता है ना, आप कैसे हो, इस तरह का होता है, लेकिन वो भी लास्ट व्यक्ति ने भी कानों से बरोबर सुना, तो उनका साउंड सिस्टम एकदम परफेक्ट। उन्होंने छत में किया फिलिप्स का, उस समय प्रेमचंद भाई हमारे फिलिप्स में काम करते थे, तो हमने उनको बोला, फिर वो लोगों ने कंसेशन करके दिया। तब हर एक यज्ञ में कोई एकदम वो नहीं था, लेकिन सभी सेंटर के भाई बहनों ने मिलके किया। एक अफ्रीका के 2 भाई थे, एक रतिलाल भाई और छगन भाई नाम था, मेरे को याद है। तो उन्होंने दादी को कहा, दादी हम अकेले आपको बना देते हैं, आप कोई से लेने की, कोई सेंटर से, किसी से, कहां से भी लेने की जरूरत नहीं है। दादी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं लेंगी, पूरी पूरी तलाव होता है, सबका रग अंदर पड़ना चाहिए। और सच्ची जब ओम शांति भवन बन गया, कॉन्फ्रेंस का इनोग्रेशन हो गया, उसके बाद हमारे जो 300-400 जो भी सेंटर थे, हजार होंगे, बाद में तो इतनी सेवा हुई, स्थान हो गया, बाद में इतनी सेवा फैली कि बात नहीं पूछो। फटाफट आगे और सेंटर खुलते गए, सेवाएं होती गई विंगमार की, और हर साल में कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम ओम शांति भवन में करते गए। परंतु मैंने देखा कि दादी का एक दृढ़ संकल्प था, तो संकल्प की ही मैं कहेंगी शक्ति है। ऐसे हमारी जानकी दादी का अनुभव सुनाऊं। मैं जानकी दादी जो थी, वो तो आपको सबको पता है मुंबई में पानी आया, ये आपको मालूम है 26 जुलाई को। मैं तो मधुबन में थी, पर दादी वहां आई थी और हमारी बहनें थी, और जब पानी भर गया हमारे, तो हॉल में भी पानी भर गया था, हॉल तो ठीक लेकिन जो रूम है उसमें भी पानी आ गया था 5 फीट। तो दादी को बोला, दादी पूना इसलिए आई थी कि पूना जाने का था, तो दादी को बोला दादी नहीं जाओ बहनों ने, वहां से हीराबाई करके एक भाई थे जो दादी को लेने आ रहे थे, उन्होंने बोला बहुत रास्ते में पानी है, तो दादी को बोलो नहीं आवे उतना अच्छा है। तो दादी ने कहा नहीं नहीं 10,000 लोग वहां मेरे लिए बैठे हैं, सबको मुझे तो 10,000 लोगों को टोली देनी है। तो देखो दादी दृढ़ संकल्प दादी का, दादी गई और वहां से सब प्लेन बंद हो गए, पर दादी पहले चली गई लास्ट फ्लाइट में, और वहां से दादी लंदन भी पहुंच गई, दिल्ली से लंदन भी पहुंच गई। तो ये दृढ़ संकल्प है। उसी तरह दादी कहती थी मैं कभी व्यर्थ संकल्प करती नहीं हूं। व्यर्थ संकल्पों में कभी भी कोई बात करे तो भी दादी बोलती थी मैं कोई डस्टबिन हूं क्या। दादी सुनती भी नहीं थी कभी भी, नहीं कोई कि हम कुछ बात करेंगे बाकी, दादी कभी नहीं सुनती थी। ऐसे ही हमारी, मैं कहेंगी गुलजार दादी थी हमेशा। दादी ने सबको रामलीला ग्राउंड में वर्णन नहीं करेगी, सबको मालूम है ये पुराना एग्जाम्पल है रामलीला ग्राउंड का, पर दादी ने कहा सब योग करे, मालूम है ना सबको रामलीला ग्राउंड का, मालूम है ना भाई, भाइयों को मालूम है कि नहीं मालूम है, कोई हाथ उठाओ, थोड़े को नहीं मालूम है। तो असंभव को भी दादी ने संभव करके दिखाया, सबने योग किया। उस समय ब्रेजनेव आने वाले थे, रामलीला ग्राउंड में हमारा प्रोग्राम था, पर देवियों का स्टॉल बन गया था, तो उन्होंने आके बोल दिया, इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं ये हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। पर देखो असंभव को भी संभव कर दिया। ऐसे हमारे गुलजार दादी के तो बहुत हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैसे दादी के संकल्प की शक्ति जो कहेंगे वो कैसे दादी की पावरफुल थे। हमको एक अपना भी एग्जाम्पल है, जो हम हॉस्पिटल चलाते हैं, कई लोग जाते हैं ऑपरेशन करने, तो मैं जरूर, मेरे को प्रतिभा बहन फोन कराती है कि ये जा रहा है ऑपरेशन, ओटी में जा रहा है, तो मैं उनको कहती हूँ, मैं हमेशा शुभ संकल्प देती हूँ, शिव बाबा की दिव्य शक्ति आपके आगे आगे जा रही है, आपके ऑपरेशन को सरल सफल और सहज कर देंगी। वो बाहर हंसते हंसते आएगा, अरे मेरा ऑपरेशन मेरे को पता ही नहीं पड़ा, ऐसे भी नहीं पता पड़ने वाला था, एनेस्थेसिया देते हैं तो, परंतु मैं ठीक हो गई। तो एंजियोग्राफी करने कोई जाता है, मैं हमेशा उसको ये बोल के ही भेजती हूँ, 6 मास पहले मेरा ऑपरेशन था, मैंने भी खुद ने अनुभव किया, मैंने 5 बातें ठान ली थी, संकल्प पावरफुल मैं करती थी। मैं कभी भी, मेरे को मुन्नी बहन ने पूछा तू डरती नहीं हो, मैंने कहा मैं जरा भी डरती नहीं हूँ। 5 संकल्प में हमेशा इतना चेकिंग करते थे वो लोग, कभी भी कहाँ भी MRI में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पेट स्कैन किया, कितना बहुत बहुत चेकिंग किया, और ऑपरेशन के लिए भी गई, मैंने एक ही संकल्प लेके दृढ़ संकल्प करती थी मैं, यही पहले तो बोलती थी शिव बाबा की दिव्य शक्ति मेरे आगे आगे जा रही है, मेरे ऑपरेशन को सरल सफल सहज करती है। दूसरा बोलती थी मैं कि मेरा सूली से कांटा से फूल हो रहा है। तीसरा मैं बोलती थी सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मेरा जरूर सफल ही सब कुछ हो जाएगा, खुद बोलती थी। चौथा मैं बोलती थी अरे शिव बाबा तू ही तो मेरा रूहानी सर्जन है, और तू ही आकर के मेरा ऑपरेशन करेगा, रूहानी सर्जन हो आप। पांचवा मैं बोलती थी बाबा तेरा वरदानी भरा हाथ जो है वो मेरे मस्तक पर है, और सच्ची ऐसा हुआ, कितना भी कॉम्प्लिकेशन मेरा सरल सफल और सब कुछ सहज हो गया, मेरे को पता ही नहीं पड़ा। तो ये संकल्प जो है वो हमारे हमेशा पावरफुल होना चाहिए। आप लोग यहाँ आए हो ये भट्टी में, जरूर आप लोग ये पावरफुल संकल्प और संकल्पों को जमा, श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करके ही जाना, उसकी विधि को समझना। आप विधि को समझेंगे उसकी, तो अपने आप संकल्पों की वृद्धि भी होती जाएंगी। और यही सोचो, अपने अंदर ये सोचो कि मैं अपने संकल्पों की रचयिता हूं, मेरे को मेरी चेतना को जागृत करना है मुझे। और स्वदर्शन चक्र, आप आधा घंटा अपने लिए यहाँ मधुबन में आए हो, आधा घंटा अपने लिए मनन चिंतन के लिए, कहाँ भी बाबा के रूम में बैठो, बाबा की झोपड़ी में बैठो, जहाँ बैठना है हिस्ट्री हॉल में बैठो, लेकिन अपना दो वहाँ समय और ये सोचो, अपना मनन चिंतन, अपना स्व चिंतन आप लोग जरूर करो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र को घुमाओ आप लोग। स्वदर्शन चक्र के लिए आप एक घंटा दो, बरोबर एक घंटा दो। 15 में आप चार, हमारा चार तो चार धाम यात्रा है ना, आप 15-15 मिनट बैठो एक एक जगह पर। 15 मिनट पहले आप अपने बारे में सोचो, स्व के बारे में स्वचिंतन करो, बहुत अच्छी तरह से स्वचिंतन, आत्मा आत्मिक स्थिति का, अशरीरी बनने का आप अभ्यास करो यहाँ, और बाबा जरूर आपको अनुभव कराएगा। दूसरा, दूसरी जगह जाओ, 15 मिनट और दो, उसमें आप ये सोचो कि बाबा हमें कैसे मदद कर रहा है, हमारे जो भी घर है, हमारा घर कौन सा है, असली घर कौन सा है, उसके नाम याद करो। आप उसके नाम याद करो, कौन से नाम है, हमारा स्वीट साइलेंस होम, मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्म लोक, कितने नाम है, उस नाम के ऊपर आप सोचो। लास्ट तो हम कहेंगे हमारा नाम है स्वीट साइलेंस होम, हमारा अति प्यारा अति मीठा बाबा का ये घर है, हमारा भी घर है, तो आप उसके ऊपर मनन चिंतन करो। तीसरा, आप ये सोचो, 15 मिनट और दो, और ये सोचो कि हम कहाँ से आए और कहाँ हमें जाना है। हाँ, तो हम कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना है, तो आप उनके बारे में भी अच्छी तरह सोचो। और सृष्टि चक्र ऐसे स्वदर्शन चक्र घुमाओ कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, अभी कहाँ बैठे हैं हम लोग, अभी कहाँ बैठे हैं, संगम युग में बैठे हैं। तो संगम युग की 20 स्मृतियां आप याद करो, संगम युग की 20 स्मृतियां याद करो कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, ऐसी 20 स्मृतियां आप 15 मिनट उनको दे दो, याद करो। और चौथा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ जो मैं कहाँ हूं, अभी कहाँ जाना है, कहाँ सैर करने जाना है, स्वर्णिम सृष्टि की सैर करो कि मैं, मेरा धर्म कौन सा है, ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म की मैं आत्मा हूं। फिर उसके सत्युग के बारे में, स्वर्णिम सृष्टि के बारे में सोचो। तो एक घंटा आप यहाँ मधुबन में, चार धाम यात्रा है तो चारों जगह 15-15 मिनट देके आप उनके ऊपर अच्छी तरह से मनन चिंतन करो। और यहाँ आपको मनसा सेवा का, सब कुछ छोड़ के आए हैं, अभी तो छोड़ के आए तो याद नहीं करना वहाँ, यहाँ ही मनसा सेवा जो है वो मनसा सेवा के, तो मैंने हमेशा आप लोगों को मालूम है मैं 5 संकल्प जो है वो देती हूँ, वो 5 संकल्प, संकल्प से संकल्प की सेवा हमें करनी है, दृष्टि से दृष्टि की सेवा करनी है, वृत्ति से वृत्ति की सेवा हमें करनी है, स्वरूप से स्वरूप की सेवा हमें करनी है, और स्मृति से स्मृति की सेवा हमें करनी है। ये 5 सूक्ष्म संकल्प लेके आप जरूर मनसा सेवा का भी अनुभव करो, तो संकल्पों की सिद्धि। बाबा ने, मेरे को याद है, हमको ओम शांति भवन में बाबा आए थे, हमको वरदान दिया था, तू जो संकल्प करेगी ना वो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं अभी किसी के लिए भी कभी भी मैं नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति भी करती ही नहीं हूं। और ये भी हमको मालूम है, मैंने कहां पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से, कि जो लोग पॉजिटिव संकल्प करते हैं उसको कोई भी जहर मार नहीं सकता है, और जो नेगेटिव संकल्प करते हैं उसको कोई भी दवा असर नहीं कर सकेगी। तो ये जरूर बात, श्रेष्ठ संकल्प माने क्या, हमको पॉजिटिव संकल्प ही करना है, हमको ये बात यहाँ से जरूर लेके जानी है। तो संकल्प जब हम करेंगे तो अपने आप हमारा संकल्प जो है विधि ठीक होगी तो अपने आप वो सिद्ध हो ही जाता है। ओम शांति।
आप रहेंगे ना
तो मैंने अभी शीलू बहन को कहा, हम तो रोज मिलते हैं, रोज कराते हैं, आप ही यहाँ बनाओ प्रोग्राम और आप सबको
तीन दिन रहेंगे ना
अभी देखती
तो देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, योगिनी दीदी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। और हमारे बीच अभी मधुरवाणी ग्रुप आया है, सतीश भाई, निरंजन भाई और क्या नाम इनका, महेंद्र भाई, ये तीनों ही बहुत सुंदर गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सतीश भाई को तो सभी जानते ही हैं, निरंजन भाई हॉस्पिटल में सेवारत है, और ये महेंद्र भाई स्टोर यहाँ पांडव भवन के, तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्वागत गीत इन्होंने बनाया है जो अभी गीत गाएंगे, फिर उसके बाद आप सबको टोली मिलेगी।
और पहली बार हम लोग यहाँ मुरली चली थी ना, तो ऐसे मिट्टी थी, उसमें ऐसे चद्दर डाल दिया था और 700 लोग आराम से बैठ गए थे, पता नहीं गिच गिच में ऐसा करके बैठे थे शायद, कितने लोग बैठते इधर 700 ना, हाँ 700 लोग ही तो याद है, 700 लोग यहाँ बैठे थे और बहुत अच्छी तरह से बाबा की मुरली यहाँ चली थी, सब खुश हो रहे थे। दादी दीदी भी थी उस समय और दादी भी थी तब, ये बोला ना 83 में बना, तो दीदी बड़ी दीदी थी उस समय और जनवरी में हुआ होगा उसका,
ये तो 74 में बना। ओम शांति। 73
तो 73 तो बड़ी दीदी इधर थी, बड़ी दीदी भी बैठी थी, सब बैठे थे, और ये हॉल का इनॉग्रेशन अव्यक्त बाप दादा ने ही किया हुआ था।
यहाँ बाबा आते थे ना, ये गद्दी थी बाबा की। चलो अभी हम सुनेंगे स्वागत गीत।
ओम शांति। ओम शांति। विले पार्ला कहते ही यज्ञ का एक बड़ा इतिहास याद आता है, और यज्ञ का इतिहास हमारी योगिनी बहन से जुड़ जाता है। बहुत पुरानी बातें हैं, आज योगिनी बहन के साथ गीतों का पूरा इतिहास, यज्ञ के गीत जितने बने हैं प्रारंभिक दिनों से, योगिनी बहन बड़े इंटरेस्ट के साथ, और महेंद्र कपूर, भरत व्यास और सब जितने भी बड़े बड़े हैं उन सबसे बनवाने का श्रेय योगिनी बहन को जाता है, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, बहुत बहुत बधाइयां। मुझे याद है कि वो इतिहास एक लंबा सा, एक एक गीतों की बड़ी कहानी है, और योगिनी बहन को जब देखते हैं तो बड़ी दीदियों का आना प्रायः कम होता है यहाँ पर, लेकिन जैसा शीलू बहन कह रही थी, अब योगिनी बहन से यही है निवेदन कि वो 3 दिन यहाँ रहें और सबको जो है अच्छी गाइडेंस दें, बहुत अच्छा लगेगा। शहरों में तो वैसे भी शोरगुल बहुत होता है, वहाँ से निकल के मधुबन एकांत में आना बड़े भाग्य से मिलता है। तो सावन आया, मधुबन दिखता सूक्ष्म वतन के जैसे, बादलों में आप भी ऐसे दिखते फरिश्तों जैसे।
शीलू बहन को इतनी चिंता हो गई, बात मत पूछो, मैं आबू रोड से यहाँ चढ़ रही थी पहाड़, माउंट आबू आ रही थी, मेरे को कहती है तेरे लोग कैसे आएंगे, तू सबका कैंसिल कर दे प्रोग्राम, अभी तो यहाँ बहुत फोगी।
स्वागत है। मधुबन आए, विले पार्ले और सिकंदराबाद वाले गुलस्ता भी आया। हाँ जी जी, अभी और भी हैं। मैंने तो दो का जिक्र किया, लेकिन साथ में अपना इंक्लूड समझिए। थालियां भर भर के फूल बाबा वतन से आप पर डाले, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत।
भर भर के पापा फूल लगन से डाले, तपोभूमि में तप करने की लगन है दिल में पाले, तपोभूमि में तप करने की लगन है दिल में पाले, करते स्वागत आपला दिल के दिल से मधुबन वाले, करते स्वागत आपका हम दिल के दिल से मधुबन वाले।
बहुत सुंदर, अभी आप सबको टोली मिलेगी, टोली के बाद आप दोनों देते हैं, टोली के बाद भोजन करेंगे जैसे बताया ऊपर के डाइनिंग हॉल में, और फिर 8:30 बजे या सूरज भाई का क्लास होगा, जो भी आना चाहे ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप आए और आपका रात्रि क्लास होगा, और कल का जैसे बताया उसी अनुसार होगा। थोड़ा आगे और थोड़ा और आगे आए, ठीक है।
ओम शांति। महान सौभाग्य की बात है पांडव भवन में पहुंचना, और हमारे सामने दोनों दीदियां उपस्थित हैं। हम दोनों दीदियों से दृष्टि और टोली भी लेंगे। जी जी, भाई सभी दीदियों से, योगिनी दीदी से लेंगे, और बहनें सभी हमारी शीलू दीदी से लेंगे। दोनों दीदियाँ, आप सबको पता है अब दादियाँ अव्यक्त हो चुकी है, और दीदियों ने बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को संभाला है। मेरा सौभाग्य रहा है कि सभी दादियों की पालना भी मुझे मिली है, और दीदियों की पालना भी अभी मिल रही है। पिछले 27 सालों से मैं पार्ला मम्मा डे का भोग लेके जाता हूँ, तो दीदी से मिलना होता है। मैं देखता हूँ दीदी मेरे से मिलती है बहुत अच्छी तरह से, और उनकी दृष्टि से मुझे सकाश मिलता रहता है। हम बात करते हैं, बहुत सारी चिटचाट होती है, लेकिन उनका ओरा इतना पावरफुल है कि वहाँ जाने मात्र से हमको लगता है कि हमको कुछ प्राप्ति ज़रूर हुई है। मैं रशिया में, हमको एक वीडियो दिखाया था, 1990 में जब सेवाओं की शुरुआत हुई तो गुलजार दादी जी के साथ योगिनी दीदी वहाँ पर पहले सेवा में गई थी। उस वीडियो में दिखाया कि बहुत बड़ा हॉल है, और जगदीश भाई साहब, योगिनी दीदी और गुलजार दादी, इन्होंने सेवा की है। तो ज़रूर हमारी दीदियाँ विश्व कल्याण करने के लिए, बहुत आत्माओं का कल्याण करने के लिए देश विदेश में बहुत सेवा इन्होंने की है। हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी, उन्होंने भी कई जगह पर सेंटर खोले हैं। शीलू दीदी को बाप दादा ने हर की पौड़ी टाइटल दिया था, मतलब गंगा का एक घाट है जहाँ पर स्नान करके पवित्र बनते। तो पिछले 50 वर्षों में दीदी ने कई जगह पर सेंटर खोले हैं, और इतने सारे शिविर किए हैं कि लाखों आत्माओं को ज्ञान का स्नान करा करके पवित्र बना करके बाबा का बनाया है। तो इसलिए ये टाइटल परफेक्ट दीदी के लिए है। और सबसे पहले टीवी की जो शुरुआत हुई, टीवी से जो बाबा का ज्ञान सुना है, वो शीलू दीदी के द्वारा ही हुआ है। और मैं एक अनुभव सुनाता हूँ कि जी चैनल में
ऐसे देखते थे, कोई मिस नहीं करता था। जब बड़ी दीदी भी थी, बहुत महिमा करती थी शीलू बहन की, और बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम, बाद में बहुत आ गए, पर सबसे पहले टीवी स्टार्टिंग में जो सेवा किया है वो शीलू बहन ने किया।
93 से शुरू हुआ है। तो 3 साल पूर्व एक महाराष्ट्र के एमएलए आए थे, मिस्टर संतोष बांगर जी, और मैं उनको मधुबन दिखा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि शीलू दीदी मिल सकती है क्या? तो मैंने कहा हाँ, आप कैसे जानते हो? तो कहते हैं कि 93 में वहाँ सेंटर ओपनिंग के लिए दीदी आई थी, और स्टेज पर जब दीदी के साथ वो बैठे थे तो दीदी ने उनको वरदान दिया था कि आप इलेक्शन जीतोगे, और कहता है मैं 2 बार जीता हूँ, कहता है मैं 2 बार इलेक्शन लगातार जीता हूँ। और फिर मैंने दीदी को बुलाया, और रिसेप्शन में जब बैठे तो वो बार बार दीदी के पैर छुए, उसके चेहरे पे ऐसे खुशी थी जैसे मुझे चैतन्य देवी मिल गई। तो जरूर है बाबा और दादियों के साथ रहते हुए यज्ञ में 50 साल दीदी ने बिताया है, हमारे सभी दीदियों का ओरा आजकल इतना पावरफुल हो गया है कि बाबा उनके दृष्टि से उनके वचन से बहुत सेवा करा रहे। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली है। एक बार एक हाथ की ताली बजाएंगे सभी दोनों दीदियों के लिए। थैंक यू। अभी भाई सबसे पहले आएंगे, जितने भी भाई है हमारी योगिनी दीदी जी से टोली लेंगे, और टोली लेते समय हाथ आगे करना है और दृष्टि अवश्य लेना है। सभी भाई आइए, और बहनें टीचर्स बहनों के अलावा जो बहनें बैठी हैं वो इस तरफ से शीलू दीदी के सामने आए। हाथ सभी आगे करेंगे, दीदी को ज्यादा झुकना न पड़े, सभी ध्यान रखें। सभी दीदी के हाथ के पास हाथ करेंगे, लंबा सा नजदीक आए। सभी हाथ आगे करेंगे, आप देख रहे दीदी को झुकना न पड़े, दीदी के हाथ के पास। मुख मधुरस छलकाए नैन सुधावर शाए, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधावर शाए, प्रभु पे नौचावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी नजदीक आएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे।